समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन आज सवेरे में। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। सुबह का वक्त अपनी गर्मजोशी, ताजगी, खुशगवार हवा, पक्षियों की चहचहाहट और कई वजहों से सबको पसंद होता है। एक तरफ सुबह अंधियारी रात के बाद एक नई रोशनी का प्रतीक है, वहीं ये एक नई जद्दोजहद को भी दिखाती है। इस तरह आज सवेरे के आज के अंक में आप सुबह को और कई रंगों में देखेंगे। लेकिन कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जिक्र कर लेते हैं एक ऐसी चीज का जिसके बिना शायद हर भारतीय की सुबह अधूरी रहती है।
Unusual brews around the world. Tea. Tea is the most popular drink in the world with billions of cups drank every day. With that, good morning, good day everybody. This is Shagun Chopra with Sir Firozi. Today, it's International Tea Day. Well, yes, 21st of May, this celebrates one of the world's most beloved beverages, tea. And this is recognized by actually United Nations. This was recognized, in fact, in 2020. And the day celebrates tea farmers, promotes sustainable practices, highlights tea cultural, economic and health significance.
बिल्कुल शगुन, और बात करें अपने देश भारत की तो हमारे यहाँ तो सुबह की शुरुआत ही चाय से होती है और कहीं ना कहीं शाम की थकान भी चाय की चुस्कियों के साथ ही दूर होती है। और चाय की एक प्याली आज भी रिश्तों में मिठास घोलने और लोगों को करीब लाने का काम करती है।
वेल, इंडियाज आइकॉनिक चाय स्टॉल्स, वेल द टी कनेक्ट्स कम्युनिटीज, ट्रेडिशंस एंड जनरेशंस। मसाला चाय, लेट्स टॉक अबाउट मसाला चाय, स्पाइस्ड विद कार्डमम, जिंजर, क्लोव्स, सिनेमन, black pepper, this is perhaps the most iconic, while the adrak chai, the ginger tea, the winter staple in our nation.
बिल्कुल शगुन, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दिनों जब देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो चाय प्रेमी हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं, इनका उत्साह कम नहीं हुआ है। बिल्कुल भीषण गर्मी में भी लोग गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते नजर आ जाते हैं। यही वजह है कि चाय के प्रति लोगों की दीवानगी हर मौसम में बरकरार रहती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। बल्कि बरसात के मौसम में तो इसका मजा और भी बढ़ जाता है,
स्पेशली अदरक टी। Right. And well, in Western Europe, if I tell you about that, tea was introduced into the English language as a result of trade routes in the East. And well, the word was taken from China, where it was pronounced te. And in English, it's tea. In French, it's te. In Spanish, it's te again. In German, it's tea. It's just the same. So today, actually, as a suggestion to our listeners, you can try a new kind of a tea today. You could also use this International Tea Day to try a variety of tea which you have never had tried before.
ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। लखवा,
नहीं भाभी, हम चाय बना लेते।
अरे ये तो बन गई, तुम अपनी चाय बना लो।
तुम्हारी ये बिना दूध वाली चाय हमसे नहीं बनती भाई।
वो तो हम बना ही लेंगे, ये हम लेके जाते।
बेटा चाय कैसी बनी है?
बहुत अच्छी।
आप तो बनाने आ गई होगी आपको चाय।
सो टुडे इट्स ऑल अबाउट चाय, आर टी। So let's start the program. We have headlines, we have Metro City updates, and today we are also going to explore the history for today. Today it's 21st of May, as we told you. Let's start with the headlines.
बिल्कुल शगुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपने आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेल्ला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति बद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
India and Italy will celebrate 2027 as the year of culture and tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations but also through connections between people and societies.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई. ये बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अधिकारियों ने कहा कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अपुष्ट जानकारी फैलाते हैं. इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है. एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया.
West Bengal government has begun handing over land to border security force for barbed wire fencing along the Indo-Bangladesh border. More details from our correspondent.
Yesterday, at the State Secretariat Navarno, Chief Minister Shubhendu Odigari formally initiated the process in the presence of BSF officials. The Chief Minister accused the previous government of obstructing border security through non-cooperation. He stressed that fencing the border is vital for national and state safety, citing issues such as infiltration, smuggling, counterfeit currency, forced religious conversions and crimes linked to illegal Bangladeshi entrants. West Bengal shares nearly 2,200 kilometers of the 4,000-kilometer India-Bangladesh border, while fencing already covers about 1,600 kilometers. 600 kilometers remain unfenced. Yesterday's handover included the land for 27 kilometers, out of which 18 kilometers for fencing and 9 kilometers for BSF outposts and infrastructure. The Chief Minister assured that more land will be transferred soon, with costs fully covered by the central government and BSF. BSF Director General Praveen Kumar praised the state government, noting that cooperation long needed in border operations is now being received under the new administration.
Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं. तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है. हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है. भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं. कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक मोल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है. निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं.
वेल, समर सीजन इज सिनोनिमस विद मैंगो. So, a national mango festival, let's tell you about that. It will be organized in Raipur from the 29th to 31st of May. More than 250 varieties of mangoes will be showcased at this festival to be held at the campus of Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya. Competitions of different mango varieties, they will also be organized during the event, in which mango growers from Chhattisgarh and various other states will participate. How great!
बिल्कुल शगुन. और अब बात कर लेते हैं खेलों की. आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया. प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. श्रोताओं, अब आपको देंगे महानगरों का हाल. शुरुआत कर रहे हैं चेन्नई से शगुन.
Exactly, beginning with Chennai Metro. So, Tambaram Corporation will open Mudalvar Padipakkam, a study center and knowledge center, by 31st of June. This will help to improve access to education resources for students who are preparing for competitive examinations. The facilities, built at a total cost of 4.5 crore rupees, are expected to benefit at least 2,000 residents from surrounding areas. The multi-story building was built for about 2.5 crore rupees across 536 square meter. It will include a general reading area, preparatory area, computer zone, training center, indoor and outdoor learning spaces as well, reception space, movable study areas and bookshelves, along with CCTV surveillance, Wi-Fi connectivity and two-wheeler parking. So this was about this knowledge center, the study center. Another update. the ICMR and National Institute for Research in Tuberculosis, Ministry of Health and Family Welfare, and the Central Council for Research in SIDH designed and signed an MOU. This partnership will focus on advancing integrative strategies against tuberculosis through clinical trials, innovative drug development, capacity building and nutritional support with the traditional SIDH system of medicine. Following the ceremony, a technical session on the scope of SIDH system of medicine for the TB elimination in India, it was held in connection with the TB Mukt Bharat Abhiyan. This is a 100 days campaign. Now let's find out what's happening in Delhi.
शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल राजधानी दिल्ली से. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं के लिए टैलेंट हंट योजना हौसलों की उड़ान 2026-27 और इसके डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य युवाओं की छिपी प्रतिभाओं को पहचान देना, उन्हें निखारना और आगे बढ़ाना है. उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 10 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है. गुजरात में कच्छ के सीमावर्ती जिले को राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई रेल सेवा जल्द ही शुरू हो रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. पश्चिम रेलवे के सूत्रों के अनुसार रेलगाड़ी सुबह 11 बजे भुज से शुरू होकर राजस्थान के जालौर और पाली होते हुए अगले दिन लगभग इसी समय दिल्ली पहुंचेगी. भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को विश्व तीरंदाजी महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी का सदस्य नामित किया है. श्री सचदेवा वर्ष 2008 से पहले दिल्ली तीरंदाजी संघ और बाद में भारतीय तीरंदाजी संघ में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सक्रिय रूप से कार्य करते रहे हैं. और शगुन, आपके पास बेंगलुरु से क्या अपडेट है?
The Bangalore Water Supply and Sewerage Board approach towards water conservation, wastewater recycling, as well as reuse and sustainable water governance model. This has received acclaim at the Global Water Summit being held in Madrid, Spain. So the board chairman, Dr. Ram Prasad Manohar, has made a statement that the urban water governance model has earned appreciation for its innovative and sustainable water management practices. The recognition is for its contribution to achieve the United Nations Sustainable Development Goals, ensuring clean water and sanitation for all. The board's performance over the past 3 years in urban water supply, as well as sanitation management, technology adoption, infrastructure expansion and sustainable utility governance, was considered to be listed among the top 5 global agencies. The Bangalore Water Board is one among other organizations, each from Chile, Malaysia, and 2 from Brazil to receive this distinction. This was all about Bengaluru.
और अब बात कर लेते हैं शहर मुंबई की. मुंबई के यशवंतराव चव्हाण केंद्र में भारत सरकार की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना पर जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम और अन्य उद्योगों को इस योजना के बारे में जानकारी देना था. इस सम्मेलन में एमएसएमई और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समय पर और बिना किसी परेशानी के ऋण सहायता प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया. कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार के जनसमर्थ पोर्टल पर ECLGS के तहत ऋण आवेदनों और अनुमोदनों की पूरी तरह से डिजिटल, कागज रहित और सरलीकृत प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया.
Now we'll head to Hyderabad. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has instructed officials to create a new policy to encourage global capability centers in areas outside Hyderabad. So the Global Capability Centres are large offices where international companies set up operations. The Chief Minister wants to spread job creation to Tier 2 and Tier 3 cities. He suggested encouraging the GCCs, the Global Capability Centres, along highways connecting Nizamabad and Warangal. This will help develop underserved areas and create employment opportunities beyond Hyderabad. The government also plans to spread data centre establishments across the state. Data centers, they are facilities that store and manage computer information. So the Chief Minister held a review meeting with IT and industries officials to discuss these plans. He emphasized that Bharat Future City, a new industrial area being developed, must follow environment-friendly net zero principles with maintaining global standards as well.
और अब बात करेंगे अपने आखिरी महानगर की। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि CAA के तहत सुरक्षित 7 समुदायों के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते वो 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत में आए हों। श्रोताओं, अब आपको दे रहे हैं महानगरों के मौसम की जानकारी। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में आज लू का कहर जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान के 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 46 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बिजली कड़क सकती है, न्यूनतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
सो चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 29 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 40 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 22 डिग्री सेल्सियस। Maximum temperature will be around 33 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky. There is a possibility of development of thunder lightning there, Sir Firozi. The minimum temperature will be around 29 degrees. Maximum temperature will be around 42 degrees Celsius.
और शगुन, अब बात कर लेते हैं इतिहास की घटनाओं की और जान लेते हैं कि आज का यानी 21 मई का दिन क्यों इतिहास में दर्ज हो गया। आज सबसे पहले बात कर रहे हैं एंटी टेररिज्म डे यानी आतंकरोधी दिवस की। भारत में 21 मई को एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। आज दुनिया जिन समस्याओं का सामना कर रही है उनमें सबसे बड़ी और अहम समस्या आतंकवाद है। आतंकवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए भारत ने 21 मई का दिन इसे समर्पित किया। पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले को भी भारत कभी नहीं भूल पाएगा, जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इस घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में विभिन्न आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ दुनिया के सामने आतंकवाद से पीड़ित होने का रोना नहीं रोएगा, बल्कि दोषियों को अपनी सामर्थ्य से दंड देगा। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। और शगुन, अब कुछ और घटनाओं का भी जिक्र कर लेते हैं।
Well, we are taking you way back in time, listeners. In 1881, the American Red Cross was officially founded by Clara Barton in Washington, D.C., the American Red Cross.
1840 mein aaj hi ke din New Zealand British colony ka hissa bana.
In 1904, in this year, FIFA was established in Paris.
और 1927 में आज ही के दिन अमेरिकी एविएटर चार्ल्स लिंडबर्ग ने अटलांटिक महासागर के पार पहली एकल नॉनस्टॉप उड़ान पूरी की।
इन 1908 द साइलेंट फिल्म अडॉप्टेशन ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड प्रीमियर्ड इन शिकागो, मार्किंग व्हाट फिल्म हिस्टोरियंस कंसीडर द बर्थ ऑफ द अमेरिकन हॉरर मूवी जॉनर। इन 1980 The cinematic sequel Star Wars: The Empire Strikes Back premiered in theaters across the US and Canada.
1994 में आज ही के दिन सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और 2003 में आज ही के दिन वैश्विक तंबाकू संधि को अपनाया गया। विश्व स्वास्थ्य सभा के 192 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से जिनेवा में तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनाया। 2010 में आज ही के दिन भारतीय नौसेना ने ओडिशा तट पर सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और श्रोताओं, अब याद करेंगे उन महान विभूतियों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। आज सबसे पहले याद कर रहे हैं जानकी देवी बजाज को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये गांधीवादी जीवन शैली की कट्टर समर्थक थी। इन्होंने कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीण विकास में काफी सहयोग किया। ये एक स्वावलंबी महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। इनके व्यक्तित्व में एक विरोधाभास सा था। जानकी देवी बजाज जहां दानी, मितव्ययी और कठोर थी, वहीं दूसरी ओर वो बहुत दयालु भी थी। जानकी देवी बजाज के आजीवन किए गए कार्यों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने सन 1956 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
वेल टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग द एक्नॉलेज्ड मास्टर ऑफ द हीरो कपलेट एंड वेल वन ऑफ द प्राइमरी टेस्ट मेकर्स ऑफ द ऑगस्टन एज, द राइटर अलेक्जेंडर पोप वाज द सेंट्रल फिगर इन न्यू क्लासिकल मूवमेंट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। So he's remembered as the first full-time professional English writer, having supported himself largely on the subscription fees for his popular translations of Homer and his edition of the works of William Shakespeare as well. Although a major cultural figure of the 18th century, Pope fell out of favor in the Romantic era then, and his interest, it was revived in the poetry in the early 20th century. He's recognized as a great formal master and a representative of the culture and politics of the Enlightenment. Well, his works, they include an essay on man and other prose and poems as well. So, I was telling you about Alexander Pope.
आज ही पुण्यतिथि है सुंदरलाल बहुगुणा की। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता को आज हम याद कर रहे हैं। सन 1984 में इन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा के अनुसार पेड़ों को काटने की अपेक्षा उन्हें लगाना अति महत्वपूर्ण है। सन 1949 में मीराबेन और ठक्कर बाप्पा के संपर्क में आने के बाद बहुगुणा दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए और उनके लिए टिहरी में ठक्कर बाप्पा हॉस्टल की स्थापना की। दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए भी इन्होंने आंदोलन छेड़ा। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री, पद्म विभूषण सहित विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बहुगुणा के इस साक्षात्कार से पता चलता है कि वो पेड़ों को केवल लकड़ी या संपत्ति नहीं बल्कि भविष्य की सांस मानते थे।
जंगल की जिंदा पैदावार ऑक्सीजन है, प्राणवायु, और फिर उसके बाद पानी है, फिर उसके बाद मिट्टी है, फिर उसके बाद खाना है, फिर उसके बाद पशुओं के लिए चारा है, फिर उसके बाद कपड़ा है, फिर उसके बाद औषधि है, फिर उसके बाद छाया है। ये तो है जंगल की जिंदा पैदावार। और जब पेड़ मर जाए, जंगल खत्म हो जाए, तो उसके बाद ईंधन और इमारती लकड़ी है।
Well, yes, Sundarlal Bahuguna, a true voice of the Chipko movement whose lifelong dedication to forests and sustainable living continues to inspire a greener and more responsible future. Listeners, today we are also remembering Thomas Wright Fats Waller, the jazz pianist and a singer. His innovations in the Harlem stride style laid much of the basis for modern jazz piano, a widely popular style in the jazz and swing eras. He toured internationally, achieving critical and commercial success.
All by myself, no one to walk with, but I'm happy on the shelf. Misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain the one I love.
Well, this is his best known composition, Ain't Misbehaving, and these are actually Honeysuckle Rose as well, another composition. They were inducted into the Grammy Hall of Fame in 1984. Well, he has been described as the soul of melody, a man who made the piano sing, both big in body and in mind.
Don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. I don't stay out.
Well,
thank you.
No place to go.
शरद जोशी की आज जयंती है। ये अपने समय के अनूठे व्यंग्य रचनाकार रहे। अपने वक्त की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने अत्यंत पैनी निगाहों से देखा। अपनी पैनी कलम से बड़ी साफ गोई के साथ इन्हें सटीक शब्दों में व्यक्त किया। शरद जोशी पहले व्यंग्य नहीं लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी आलोचना से खिन होकर व्यंग्य लिखना शुरू कर दिया। ये भारत के पहले व्यंग्यकार थे जिन्होंने पहली बार मुंबई में चकल्लस के मंच पर 1968 में गद्य पढ़ा और किसी कवि से ज्यादा लोकप्रियता हासिल की। इनकी मुख्य रचनाओं में शामिल व्यंग्य हैं परिक्रमा, किसी बहाने, यथासंभव। फिल्मों में क्षितिज और छोटी सी बात, जबकि धारावाहिक में विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी आदि शामिल हैं। आइए आपको सुनाते हैं इनके सम्मेलन के कुछ अंश।
जी, आपकी नजर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो बोला, सबसे बड़ी समस्या तो एक बार जहां से चुनाव जीत गए वहां से फिर जीतना है। मैंने कहा कि बुद्धिजीवी के नाते मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं। वे बोले, बुद्धिजीवी के नाते तो नहीं, हां गुंडे बदमाश के नाते आप मेरी जरूर मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, गुंडे बदमाश होने के लिए तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। वे बोले, तभी आइए, प्रजातंत्र तो अमर है, चुनाव तो होते ही रहेंगे। मतलब मेरा पत्ता कट गया। इन नेताओं की जो प्रमुख समस्या है उसमें तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने सोचा, चलो किसी अफसर से बात करें। जिस अफसर से मैं मिला वह हालांकि पुलिस का था मगर था विश्वसनीय। मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब उसने बात भी अकल की।
Well, Sharad Joshi, the poet writer awarded Padma Shri in 1990. Well, Sharad Joshi has written many satirical essays on political, social and cultural and economical topics as well.
और आज आदित्य चोपड़ा का भी जन्मदिन है। ये भारतीय फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, निर्माता और लेखक है। आदित्य चोपड़ा ने 18 साल की उम्र में सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म निर्माण करियर की शुरुआत की। इन्होंने अपने पिता के साथ चांदनी, लम्हे और डर जैसी कई फिल्मों में काम किया। इन्होंने अपने पिता की परंपरा और अपनी माँ की स्वतंत्र रूप से निर्मित फिल्म आईना के लिए अपनी पहली पटकथा भी लिखी।
जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहां हूं। छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो है ना हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ।
Well, Aditya Chopra's birthday today, the filmmaker most powerful and influential, I should say Indian film directors, screenwriters, one of the most powerful ones, and in Hindi cinema. Well, he has fundamentally reshaped the modern Indian studio model as well, and he prefers directing only films that he has personally written.
बना लो रोशनी से नूर के, धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के।
शर्मा दिल तो पागल है, मेरे यार की शादी है, मुझसे शादी करोगी, साथिया, हम तुम, धूम, वीर जारा, बंटी और बबली आदि इनकी कुछ अन्य फिल्में हैं।
चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो है आके पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद से फारिश जो करता हमारी।
So his directorial portfolio includes Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, the directorial debut at the age 23 starring Shah Rukh Khan and Kajol, the longest running film in the history of Indian cinema. Well, this has redefined romance for generations. And he's widely credited with grooming and launching prominent actors as well.
Yaaron,
दौर अपनाएगा। यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हसीन तुझे कल बुलाएगा।
श्रोताओं, इस जुनून भरे गीत के साथ दीजिए इजाजत सरफिरोजी और शगुन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
नमस्कार।
तो जिंदगी